તારીખ 30/8/1998 શ્રી સમયસર કળષ્ટિકા શ્લોક નંબર 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 108
પર્યુષણ પર્વનો આજે ચોથો દિવસ છે. ઉત્તમ સત્ય ધર્મનું લક્ષણ છે. ધર્મના અનંત ગુણો છે. ધર્મમાં એમાં મુખ્ય 10 ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. ધર્મ એક પ્રકારનો છે, એના ગુણ અનંત છે. 10 લક્ષણ એટલે 10 સ્વરૂપ, 10 ગુણ. એમાં એક સત્ય નામનો પણ ગુણ છે. સમ્યક પ્રકારે સરળતાવાળા ધર્મીને, સરળતાનો ધર્મ તો આવી ગયો, આર્જવ ધર્મ, એ સાચું કામ કરે, સાચું બોલે, પોતાના સત્ય સ્વરૂપને સ્વીકારે, અસત્યને ન સ્વીકારે, અસતને ન સ્વીકારે, એમ અસ્તિ નાસ્તિથી એ ધર્મ છે. સત્ય શબ્દ છે એ સત ઉપરથી આવેલો છે. જેમ ચિત ઉપરથી ચૈતન્ય શબ્દ બન્યો, ચિત ઉપરથી, એમ સત ઉપરથી સત્ય શબ્દ બનેલો છે. એ સ્વભાવ સૂચક છે. આમ રૂઢિગત રીતે સત્ય એટલે આપણે સાચું એમ કહીએ છીએ, પણ સત એટલે હોવાપણું, અને સત્ય એટલે હોવાપણાનો જેનો સ્વભાવ છે એને સત્ય કહે છે. સમ્યક દર્શનનો વિષય સત્તા છે, સત છે. સમ્યક દર્શન સત્તાને સ્વીકારે છે. એટલે જેને સમ્યક દર્શન હોય એને સત્ય ધર્મ છે. સત્ય ધર્મ છે એટલે પોતાની સત્તાને સ્વીકારવાનો ગુણ છે એમાં. સતને સ્વીકારે છે એટલે અસતનો સ્વીકાર નથી એની અંદર, એની નાસ્તી અંદર આપોઆપ છે. સતના સ્વીકારમાં અસતનો સ્વીકાર નથી. અસત એટલે શું? કે જે સ્વભાવમાં નથી તેનો પોતાપણે સ્વીકાર નહીં કરવો તે. સત્ય ધર્મ કે પર ચલતા હૈ, કે ધર્મ કા સ્વરૂપ હૈ, લક્ષણ માને ધર્મ કા સ્વરૂપ હૈ. દસ ધર્મ દસ નહીં હૈ, ધર્મ એક હી હૈ. એક હી ધર્મ કે અનેક લક્ષણ હૈ, જીતને ગુણ હૈ ઉતને લક્ષણ હૈ. અનંત ગુણ ધર્મમાં પરિણમિત હોતે હૈ આત્મા કે. સર્વગુણાંશ વો સમ્યત્વ, આત્મા કે સર્વગુણ ઉસમે ધર્મમે પરિણમિત હોતે હૈ. ઉન અનંત ગુણ મે સે 10 ગુણ કા વર્ણન કિયા હૈ. 10 ગુણ છે યા અનેક ગુણ સે ધર્મ કી શોભા હૈ. ऐसे सत्य से भी धर्म की शोभा है. धर्म से, गुणों से धर्म अलंकृत होता है. जैसे अलंकार से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे गुणों से ही धर्म की शोभा है. फिर वो सत्य है, वो रूढ़िगत रूपे सच्चा बोलने में आया है. सच्चा बोलता है उसको सत्य कहते हैं. क्यों? कि झूठ बोलना वो दोष है, अवगुण है, उसमें मायाचारी होती है, वो आर्जव से विरुद्ध है, सरलता से विरुद्ध है. लेकिन जिसको सरलता है, जिसको आर्जव है, उनको सत्य होता है. तो जैसा है वैसा ज्ञान में आएगा, और जैसा ज्ञान में होगा ऐसा ही मन में, ऐसा ही वचन में और ऐसा ही प्रवृत्ति में रहेगा, उसी को कहते हैं सत्य। तो ये बात रही सम्यक दर्शन पूर्वक असत्य नहीं होना और सत्य होना। मुमुक्षु की भूमिका में भी अपनी भूमिका के अनुसार जितना सत्य का पालन होवे और अपनी सत्ता का अवलंबन लेने के प्रति हमारी श्रद्धा तैयार होवे, ऐसा ज्ञान और ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। उस तरह से संक्षेप में सत्य धर्म के विषय में लिया। अब चलते हुए स्वाध्याय में समय सार का चौथा कलश चलता है, उसमें ये कहा कि जो आसन भव्य जीव है वह निश्चय और व्यवहार दोनों परस्पर विरुद्ध प्रवृत्ति वाले नए हैं, विरुद्ध विषय वाले कथन हैं, उसका सुमेल आसन भव्य जीव करता है। जो जीव सुमेल नहीं करता है वो आसन भव्य नहीं है, वो इसमें से नाश्ते निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुमुक्षु को चाहिए कि वो उपदेश की जितनी भी बातें हों उसका सुमेल करे, उसका कोऑर्डिनेशन करे। अगर वो नहीं करता है तो बात समुचित रूप से परिणमित नहीं होगी, उसका परिणमन नहीं आएगा, वो इसका फल है। ऐसा क्यों है कि आत्मा जो वस्तु पदार्थ है वो भी विरुद्ध धर्म को धारण करने वाला पदार्थ है। वो नित्य धर्म को भी धारण करते हैं, अनित्य धर्म को भी धारण करते हैं, शुद्धता को भी धारण करते हैं, अशुद्धता को भी धारण करता है, अस्थि को भी धारण करता है, नास्तिक को भी धारण करता है। जब पदार्थ विरुद्ध धर्म को धारण करने वाला है तो पदार्थ में पदार्थ को जानने वाला ज्ञान भी ऐसा ही होगा, और उस ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले वचन भी ऐसे ही होंगे। जब यही परिस्थिति है और भगवान की वाणी में भी ऐसी ही परस्पर विरोध मालूम पड़े, ऐसे विभिन्न नय का प्रतिपादन होता है, तो आत्मकल्याण कैसे हुए उसका सुमेल, उसका कोऑर्डिनेशन जो भव्य जीव है वो कर लेते हैं। भव्य जीव मैंने जिसका संसार अभी खत्म होने की तैयारी है वो ऐसा कर लेते हैं। कौन ऐसा नहीं करते हैं कि जिसका संसार अभी लंबा चौड़ा है वो नहीं करेगा, वो बात है। उस विषय पर राजमल जी थोड़ा और प्रकाश डालते हैं कि भव्यता क्या चीज़ है, अभव्यता क्या चीज़ है और उसमें वस्तु स्थिति क्या है। पांचवा पेज पर छे, नीचे थी पांचवी लीटी छे। भावार्थ ऐसा है कि अनंत संसार जीवों को भ्रमण करते हुए जाता है, यानी जा ही रहा है। अनंत काल से संसार में जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, इसमें हम भी एक हैं। अनंत काल से अनंत जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उस संसारी जीवों में एक भव्य राशि है, राशि मैंने समूह, संख्या, संख्या संख्या का समूह, भव्यों की भी संख्या है एक और एक अभव्य जीवों की संख्या है। उसमें अभव्य राशि जीव तीनों काल मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं है, उसमें जितने भी अभव्य है वो तो तीन काल में मोक्ष जाएंगे नहीं, वो तो अनंत अनंत जीव संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। भव्य जीव में भी कितने जीव मोक्ष जाने के योग्य होते हैं, सभी भव्य मोक्ष में चले जाएंगे और अनंत काल, कुछ अनंत काल के बाद अकेले भव्य जीव संसार में परिभ्रमण करते रह जाएंगे, ऐसा भी बनने वाले नहीं है। देखो अनंत जीव में अनंत तो अभव्य है और अनंत भव्य है, उसमें भी अनंत भव्य ऐसे हैं कि जो तीन काल में मोक्ष में जाने वाले नहीं हैं। अब जो बाकी रहे भव्य उसमें हमारा नंबर है, क्या है, जो मोक्ष जाने वाले हैं उसमें हमारा नंबर है, तो उसमें से हमको पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाना है। फिर भी इस विषय में थोड़ा ज्ञान कराते हैं, एक जानने का विषय है कि भव्य जीव में कितने जीव मोक्ष जाने के योग्य है, उनको मोक्ष पहुंचने का, मोक्ष में जाने का काल परिमाण है, मोक्ष में कब जाएंगे इसका नाप है, कौन जीव कब मोक्ष में जाएगा उनका ज्ञान भी है और वो ज्ञान के अनुसार उस काल की प्रसिद्धि भी करने में आई है। ज्ञान किसको होता है, केवल ज्ञानी को होता है। कौन सा जीव कब मोक्ष में जाएगा इसका ज्ञान केवल ज्ञानी को अनंत काल पहले भी हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है। अनंत काल पहले जिसको भी केवल ज्ञान हुआ उनको भी ज्ञान है और वर्तमान में सभी केवलियों को और सभी सिद्धों को उसका ज्ञान है। तो मोक्ष में पहुंचने का जो काल का नाप है इसका विवरण ऐसा है कि यह जीव इतना काल बीतने के बाद मोक्ष में जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। नोंद मैंने नोट कर लिया है, केवल ज्ञान ने तो वो कभी का नोट कर ही लिया है। वह जीव संसार में भ्रमण करते करते भमते भमते जब अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहेगा तब ही सम्यक्त्व उत्पन्न होने के योग्य होएगा। अब क्या है कि बिना सम्यक्त्व उत्पन्न हुए कोई मोक्ष में जाता है ऐसा नहीं बनता। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्यों कि जित अन्य आस्तिक्य दर्शन है वो भी मोक्ष को स्वीकार करता है, मोक्ष का स्वरूप अलग है उनका, उनका मोक्ष का स्वरूप भी अलग है लेकिन वो मोक्ष को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मुक्त आत्माओं को जन्म मरण नहीं होता वो भी मानते हैं, ऐसा तो मानते हैं। लेकिन जिसको सम्यक्त्व होता है उसका ही मोक्ष होता है वो बात मानेंगे, वो कार्य का स्वीकार करते हैं कारण का स्वीकार नहीं करते हैं। इसका मतलब कि उसका कार्य का स्वीकार भी उचित रूप से नहीं है, अयोग्य है, योग्य रूप से नहीं है। जैसे कोई ऐसा कहे कि हमको स्वानुभव करना है और स्वानुभव करने के लिए हम ध्यान वगैरह करते हैं, लेकिन स्वानुभव जिस विधि से होता है इस विधि का अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो स्वानुभव का स्वीकार यथार्थ रूप से नहीं करता है। कार्य का स्वीकार कारण समेत होना चाहिए। जिसको कारण का स्वीकार नहीं उसको कार्य का स्वीकार यथार्थ रूप से हो ही नहीं सकता। तो क्या कहा यहां राजमल जी ने कि जिस जीव को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम अंतर्मूर्त भी हो सकता है, अंतर्मूर्त पहले सम्यक तो प्रकट करे और मोक्ष में चला जाए ये भी बन सकता है, वो कम से कम हुआ, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पहले मोक्ष में जाने का काल के पहले किसी को सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है, और सम्यक दर्शन होने के पहले किसी का मोक्ष होवे ऐसा भी हो सकता नहीं है। इसका कारण है, मोक्ष का कारण कौन है? सम्यक्त्व है, ये मूल में वो चीज है। दंशन मूलो धम्मो, और मोक्ष मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का मूल स्वरूप निश्चय है, बीज ज्ञान बोला उसको, इसलिए इसको बीज ज्ञान बोला है। और ऐसा स्वरूप निश्चय सत्पुरुष की पहचान बिना किसी को होता नहीं, और सत्पुरुष की पहचान पूर्णता के लक्ष्य बिना किसी को होती नहीं, और पूर्णता का लक्ष्य अंतःकरण की शुद्धि बिना होता नहीं। अंतःकरण की शुद्धि परिभ्रमण की वेदना के बिना आती नहीं। तो कल के रात्रि के स्वाध्याय में भी वो बात चली, जब कृपालु देव ने ये बात कही कि विशालता मध्यस्थता सरलता और जितेंद्रियपना वो तत्व पाने का मैंने स्वतत्व का अनुभव करने का उत्तम पात्र है, लेकिन ऐसा योग्य ऐसी योग्यता अधिकारीपना किसको आता है कि अनंत जन्म मरण जिसका हो चुका है ऐसी आत्मा की करुणा जिसको आती है उसको पात्रता उसको आती है। इसके पहले किसी को पात्रता आई हो वो बात नहीं है। कोई शास्त्र पढ़ने से पात्रता आ जाती है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमने समयसार पढ़ लिया है और पढ़ते हैं इसलिए हम पात्र हैं, बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ हम पूजा भक्ति करते हैं वितराग देव गुरु शास्त्र की इसलिए पात्रता आ गई, वो बात भी नहीं है। और हम व्रत उपवास करते हैं या दयादान करते हैं या जप तप करते हैं इसलिए पात्रता आ गई, वो बात भी नहीं है। पात्रता की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए वो बात लिया है। कितनी छोटी उम्र में 21-20 साल की उम्र 21 साल की उम्र में वो बात लिखते हैं कि अनंत जन्म मरण करी चुकेला एवा आत्मानी जेने अंतरथी करुणा आवे छे ते जीव आ पात्रता माटेनो अधिकारी थाय छे। શબ્દો તો મૂળ શબ્દો તો બહુ સરસ છે, એમની તો કહેવાની જે શૈલી છે એ પણ અજબ ગજબની છે. પોતાની મૌલિકતા છે એની અંદર, શું કહેવાની પણ એક મૌલિકતા છે. અનંત જન્મ મરણ કરી ચૂકેલા આ આત્માની કરુણા તેવા અધિકારીને ઉત્પન્ન થાય છે, જો અહીંયાથી વાત લીધી છે, અને તે જ કર્મ મુક્ત થવાનો જિજ્ઞાસુ કહી શકાય છે. એને જ મોક્ષનું લક્ષ્ય, પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય, એને દ્રઢ મુમુક્ષુતા આવી એમ કહી શકાય. એ સિવાય નહીં, અને તે જ પુરુષ નામ, તે જ આત્મા, પુરુષ નામ આત્મા, સ્ત્રી પુરુષની વાત નથી, તે જ પુરુષ માં, તે જ આત્મા યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજે. જ્ઞાનમાં યથાર્થતા આવી, જ્ઞાનમાં યથાર્થતા આવ્યા વિના સમ્યક્ત્વ આવે નહીં. સમ્યક્ત્વ કા કારણ યથાર્થતા મેં રહા હૈ. તે જ પુરુષ યથાર્થ પદાર્થને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજી શકે, તે જ પુરુષ પદાર્થની પર્યાય કોઈ પણ પ્રકારની હોય તેને યથાર્થ પ્રકારે સમજી શકે, પછી શું જ આવે છે એનો જે કોઈ પણ પ્રસંગને, કોઈ પણ વાતને, કોઈ પણ ઉદયને, કોઈ પણ પર્યાયને યથાર્થ પ્રકારે જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ, રાઈટ એંગલ ઓફ થિંકિંગ, શું વિચારવાનો યથાર્થ દ્રષ્ટિકોણ તે જ પુરુષને આવે છે. અને તે જ પુરુષ પોતાની મુક્તિ થવાના પુરુષાર્થમાં યોજાય છે. એવો શબ્દ વાપર્યો છે, કેમ યોજાય છે, કે એ તે જ પુરુષ યોજનાબદ્ધ રીતે આગળ વધે છે માટે યોજાય છે એમ કે છે. આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા માટે મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં પણ એક યોજના છે જ્ઞાનીઓની. એને જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનીનો માર્ગ કયો, કૃપાળુદેવે જ્ઞાનીનો માર્ગ કયો. અપની મનમાની નહીં ચલતી, કે મેરે મુજે તો એસા કરના હૈ, મેં તો એ સાધન કરૂંગા, મેં તો વો સાધન કરૂંગા. કોઈ શરીર બલ વાળા વ્રત તપ ઉપવાસ મેં લગ જાતા હૈ, કોઈ ધન બલ વાળા દાનાદિ મેં લગ જાતા હૈ, ઓર કોઈ મન વાળા શાસ્ત્ર પઢને મેં લગ જાતા હૈ, મન મેને ક્ષોભ. ये तन मन धन का बल का प्रयोग अपनी मनमानी रीति से करते हैं, वो मोक्ष मार्ग में कभी पहुंचते नहीं. तो ये योजना का विषय है, योजना बनाई है ज्ञानियों ने अपने अनुभव से. ज्ञानी का मार्ग कहो या तीर्थंकर देव का मार्ग कहो, एक ही बात है. એ માર્ગથી જુદો ચીલો ચાતરવો, કાઠિયાવાડી ભાષામાં એમ કે છે, શું હિન્દી મેં કુછ કહેતા હોંગે, દૂસરા માર્ગ ગ્રહણ કરના. પણ જુદો ચીલો ચાતરવો એટલે શું, કે રસ્તો તો બરાબર જતો હોય, હવે આવે બોલો એમ કે ભાઈ હું તો આ રસ્તે, હા મારે તો આમ શોર્ટકટ કરવો છે, હું આ રસ્તે જઈશ, તું બીજે રસ્તે જઈશ તો નક્કી ભૂલો પડીશ. તું જુદો પીડ્યો એ જ ભૂલો પીડ્યો, જુદો પીડ્યો એ જ ભૂલો પીડ્યો છે એમ વાત છે. કેમ કે માર્ગ એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ, બીજા માર્ગે જવાનો સવાલ જ નથી. જો માર્ગ અનંત જ્ઞાનીઓને ઓર અનંત તીર્થંકરોને અનુભવ સિદ્ધ ક્યા, अनुभव से प्राप्त किया। अब अनजाने लोग जुदा रास्ता से चलने का प्रयास करे, उसमें कहाँ की बुद्धिमानी है, वो तो मूर्खता है, बुद्धिमानी नहीं है केवल मूर्खता है, है? इसलिए जो अपनी मनमानी करता है उनको भगवान स्वच्छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्वच्छंद है वो धार्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। कोई बहुत क्रोधी होता है वो बड़ा अवगुण है, वो बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा लोभी होता है वो कोई बड़ा अवगुण नहीं है कि देखो भाई इसके पास पैसे बहुत हैं लेकिन देता नहीं है, देखो ये बिल्कुल क्रोध में बहुत बात बात में आ जाता है, वो नहीं बात कहा। कोई बात बात में झूठ बोलता है इसलिए बहुत मायाचारी है, वो बात नहीं लिया। हाँ, और कोई बहुत अहंकार करता है, मानी है, बहुत अभिमानी है, उसका भी बात नहीं लिया। स्वच्छंद करता है वो सबसे बड़ा दोषित है और अनंत परिभ्रमण का कारण वो है। वो तो धार्मिक साधन करता है तो क्या अनंत परिभ्रमण का कारण वो ही है। अनंतानुमंदि का मूल स्वच्छंद में है, ये बात क्या है? जो आत्मा मुक्त हुए हैं, यह आत्मा कोई स्वच्छंद वर्तना से मुक्त नहीं हुए हैं, देखो। परंतु आप्त पुरुष ने बोधित किया हुआ मार्ग के प्रबल अवलंबन से मुक्त हुए हैं, वो बात क्या है? स्वच्छंद का निषेध किया साथ साथ, वो बात कह करके स्वच्छंद का निषेध कर डाला है। तो कहते हैं कि जीव संसार में परिभ्रमण करते करते जब उसका मोक्ष पहुंचने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, मात्र कह करके सीमित हो जाता है, सीमित काल रहता है, तभी सम्यक्त्व उत्पन्न होने के योग्य है, तभी उसको सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसके पहले कभी किसी को सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं है, और इसी का नाम काल लब्धि कहने में आता है। ये काल लब्धि का ज्ञान कराया, काल लब्धि का ज्ञान कराया है। ज्ञान कराया मतलब क्या? कि उसका अवलंबन हमको लेना नहीं है। क्यों? कि हम तो केवल ज्ञानी है नहीं, कोई संसार में परिभ्रमण करने वाला संसारी जीव तो कोई केवल ज्ञानी है ही नहीं, तो वो तो अपनी काल लब्धि को जानता नहीं। अब जानता नहीं और अवलंबन लेवे कि केवल ज्ञानी ने जब जाना होगा तब मुझे सम्यक तो होगा, इसके पहले तो होगा नहीं, और इसमें तो मेरी कोई चलने वाली है ही नहीं। तो जैसे कोई केवल ज्ञान के अधीन मेरी आत्मा हो गई, ऐसा वो ले लेता है। वो असरलता से काल लब्धि को समझता है। सरलता से नहीं समझता है काल लब्धि का स्वरूप। जो काल लब्धि को जानता नहीं है अपनी, फिर भी काल लब्धि का आलंबन लेता है, वो जीव असरल है, सरल नहीं है, ऐसी बात है। ये तो एक जानने का विषय है, हैं? उनको वर्तमान में अपना काम करने की रुचि नहीं है, और जिसको अपना कार्य करने की रुचि होती है उनको अंदर से ऐसा आता है कि मेरी तो काल लब्धि पक गई है, भले ही मुझे केवल ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरी काल लब्धि पक गई है, उसको अंदर से ऐसा आता है। वो काल लब्धि का आलम्बन लेने वाला है ही नहीं, उसकी रुचि जोर करती है, उसको काल लब्धि के विषय में शंका भी नहीं पड़ती। आलम्बन तो नहीं लेता, लेकिन उसको शंका भी नहीं होती कि मेरी काल लब्धि नहीं पक्की होगी और मुझे सम्यक नहीं होगा तो, और मेरा जो भी परिश्रम है वो निकम्मा जाएगा, व्यर्थ जाएगा, तो क्या करेंगे, क्या करूंगा मैं, ऐसी शंका भी उसको नहीं होती। ये बहुत शास्त्र अभ्यासी, तत्व के अभ्यास करने वाले जीवों के लिए एक जटिल प्रश्न है। ये काल लब्धि वाला, काल लब्धि वाला जटिल प्रश्न है। वो अभी पढ़ा था ना, किसमें काल लब्धि का विषय पढ़ा था ना, वो पत्रिका थी, उसमें कोई विद्वान विद्वान ने बात छेड़ी थी कि जब केवल ज्ञान को जैन है और जिनेन्द्र परमात्मा, अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान का अस्वीकार करे वो तो बनेगा नहीं। को त्रिकाल वेत्ता मानते हैं क्या मान, वो अपनी भाषा में मानते हैं कि त्रिकाल वेत्ता, त्रिकाल को जानने वाला है। वो भी योग संज्ञा से तो परमात्मा को ऐसा ही मानते हैं। और जैन में तो बात प्रसिद्ध है, अनंत चतुष्टी में केवल ज्ञान केवल दर्शन है ही। केवल ज्ञान को माने और केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान होते ही तीन काल जानने में वो लोगों का भी, दूसरे जीवों का मोक्ष का ज्ञान नहीं हुए, वो बात कैसे बनेगी? जब दूसरे जीव का मोक्ष का एक निश्चित काल जान लिया केवल ज्ञानी ने, और इसके पहले उसका मोक्ष नहीं होता, तो उनको ये एक बात में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि फिर तो मैं पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, मेरे पुरुषार्थाधीन बात क्या रही, वो तो केवल ज्ञान अधीन बात हो गई। तो केवल ज्ञान किसी को परतंत्र बना देता है ऐसी बात तो नहीं है, वो तो जान लेते हैं। अनंत गुण धर्मों का एक साथ ज्ञान होने से पदार्थ का पूरा विज्ञान उसके ज्ञान में आ जाता है, और जब पदार्थ का पूरा विज्ञान ज्ञान में आ जाता है तब वो वैज्ञानिक पद्धति से कैसे सम्यक्त्व को पाएगा, कैसे मोक्ष को पाएगा, वो भी उसके ज्ञान में आ ही जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बस वो तो पदार्थ ज्ञान का विषय हो गया। जैसे कोई वाहन होता है उसका स्पीड होता है, कुछ न कुछ तो स्पीड होता है ना, साइकिल का साइकिल के प्रमाण में, अनुपात में, कार का कार के अनुपात में, रेलवे का रेलवे के प्रमाण में, और प्लेन का प्लेन के प्रमाण में, बैलगाड़ी का बैलगाड़ी के प्रमाण में, घोड़ा गाड़ी का घोड़ा गाड़ी के प्रमाण में, होता है कि नहीं होता है? अब इस स्पीड में इतना अंतर काटने में इतना टाइम लगेगा, उसमें कौन सी अनुचित बात है? तो साइंटिफिक बात होगी कि जो 50 किलोमीटर पर अवर जाता है तो एक कलाक में 50 किलोमीटर काटेगा, उसमें न 49 होने का सवाल है, 51 होने का सवाल है, वो तो साइंटिफिक बात है। आप जिस स्पीड में चलते हो उस स्पीड में ही अंतर काटेगा, सीधी बात है। बस ऐसी बात मोक्ष में बिराने की है, उसमें किसी ज्ञान के अधीन स्पीड थोड़ी होगी, ज्ञान के अधीन कोई स्पीड नहीं होती, स्पीड स्वतंत्र है, ज्ञान स्वतंत्र है। ऐसी बात है। तो वो ज्ञान करने का विषय हो गया। अब कहते हैं कि यद्यपि सम्यक्त्व रूप जीव द्रव्य परिणमता है, परिणमन तो स्वतंत्र है जीव का, तथापि काल लब्धि बिना करोड़ उपाय जो करने में आए तो भी जीव सम्यक्त्व रूप परिणमन में योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। कैसा लिखा है, पुरुषार्थ करने वाले को डिप्रेशन आ जाए ऐसी बात है। क्या तो करोड़ उपाय करे तो भी काललब्धि नहीं पक्की है तो उसको सम्यक तो नहीं होगा, भले ने करोड़ उपाय करे, एक दो पांच पच्चीस नहीं, लाख नहीं, करोड़ उपाय करे तो, कितना भी उपाय करे तो। लेकिन बात वो है कि काललब्धि का ज्ञान हमको तो है नहीं, फिर हम आलम्बन क्यों लेते हैं। हमारा ड्यूटी, ये तो एक जानने की बात है, हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी क्या है कि हमको तो चाहिए चाहिए और चाहिए। ये मोक्ष पाने में अकेली बात नहीं है, हर पर्याय की वो बात है, क्योंकि केवल ज्ञान में तो प्रत्येक पर्याय का आगे बात है। और सम्यक्त्व और मोक्ष पाने में तुमको पुरुषार्थ ठंडा होता है इस बात को जान करके, तो खाने पीने में भी ठंडा होना ही चाहिए। तुमको भूख लगी है, तुमको तृषा लगी है, और केवल ज्ञानी इन्हें जब जाना है तभी खुराक पानी मिलेगा, इसके पहले तो मिलने वाला है ही नहीं। वो भी केवल ज्ञानी में ज्ञानी ने जाना है कि नहीं जाना है, तो वहां तुम ठंडा हो जाता है क्या। हाँ, भूख लगी है, पानी खुराक चाहिए, खुराक के लिए पैसे चाहिए, अनुकूलता के लिए पैसे चाहिए, वहां भी केवल ज्ञानी ने देखा है वैसा ही होने वाला है, वहां कोई दूसरी बात नहीं है, तो वहां तो तुम ऐसा नहीं करता, मुझे तो जरूरत है, मेरे तो नहीं चलेगा, मेरे तो चलता नहीं है, वहां तो ऐसा चलता है, तो यहां तुझे सम्यक्त्व और मोक्ष के बिना कैसे चलता है। वहां अनुकूलता से सुख मिलता है, और भूख मिटती है तो साता होती है, साता का सुख मिलता है, तृषा मिटती है तो साता का सुख। तो आत्मिक सुख के लिए वो बात क्यों नहीं आती तुमको, वहां नहीं चलता तो यहां कैसे चलता है तुमको, तुमको विकल्प की अशांति कैसे बर्दाश्त होती है, ये सवाल है। तुमको अशांति बर्दाश्त क्यों होती है, और शांति के लिए तुमको चटपटी हाँ क्यों नहीं लगती है। तो पानी बिना नहीं चलता है तो शांति बिना क्यों चलता है। जिसको नहीं चलता है उनका सहज पुरुषार्थ उठे बिना रहेगा नहीं। इस विषय में समाधान के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ का स्वरूप जानना चाहिए। पुरुषार्थ का स्वरूप जाने बिना इसका समाधान मिलेगा नहीं। पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक पुरुषार्थ की पर्याय जिस गुण से होती है उसको वीर्य गुण कहा है। ये तो छह द्रव्य में है, लेकिन जड़ वीर्य की बात अपने को प्रयोजनभूत नहीं है। छह द्रव्य में वो ताकत है अपना प्रयोजनभूत कार्य करना, स्वरूपभूत कार्य करना, स्वरूप रचना करने का जिसमें गुण है उसको वीर्य गुण कहते हैं शास्त्र में। तो प्रत्येक आत्मा में पुरुषार्थ करने का स्वभाव है, वीर्य गुण माने स्वभाव। कोई आत्मा पुरुषार्थ किए बिना एक समय भी परिणमन करता नहीं। तो पुरुषार्थ करना नहीं करने का तो सवाल है ही नहीं कि हम पुरुषार्थ करें कि नहीं करें। काल लब्धि नहीं पक्की हो तो हम पुरुषार्थ करें कि नहीं करें, कि तुम पुरुषार्थ किए बिना किए कब तुम रहा हो वो तो बताओ, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता है ऐसा एक समय तो तुम बताओ हमको, कि जहाँ भी तुमको जरूरत लगी है, जहाँ तुम्हारी रुचि है, वहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ सहज 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 चलता है कि नहीं चलता है, देख लो कि चलता ही है। अब नहीं करने का सवाल कहाँ हुआ, अब उसका विवेक करना है कि यथास्थान में चलता है, गलत स्थान में चलता है, कहाँ चलता है देख लो। अपने पुरुषार्थ को योग्य स्थान रूप कीजिए, क्या योग्य स्थान में लगाओ, ऐसा उपदेश है भगवान का कि अपने पुरुषार्थ को योग्य स्थान रूप करिए कीजिए, अयोग्य स्थान में मत लगाइए, पुरुषार्थ तो लगा ही रहे हो तुम। तो फिर कहते हैं कि देखो इसका स्वभाव भी अपने स्वरूप में लगने का ही है, और जगह पुरुषार्थ लगता है वो विभाव है, वो पुरुषार्थ का स्वभाव नहीं किंतु ये पुरुषार्थ का विभाव है। तो विभाव विभाव से तुमको दुख होता है, स्वभाव से तुमको सुख होएगा, विवेक तुमको करना है। इसलिए कहते हैं कि यद्यपि सम्यक्त्व रूप तो जीव द्रव्य परिणमन करता है अपने पुरुषार्थ से, तो अपने पुरुषार्थ से करेगा, फिर भी उसमें काल लब्धि का नियम लागू पड़ता है। इसके पहले यदि कोई पुरुषार्थ करोड़ प्रकार से करता है तो वो अन्यथा करता है, सही नहीं करता है। कोई सही पुरुषार्थ करे और उसको प्राप्ति नहीं होवे ऐसा तीन काल में बनने वाला है ही नहीं, लेकिन वो अन्यथा पुरुषार्थ कर लेता है, अपनी मनमानी करता है, वो ज्ञानी के मार्ग पे चलता नहीं है। कोई अनजाने में और कोई जानबूझ करके भी, नहीं चलता है तो नहीं चलता है, नहीं चलता है तो काम नहीं होता है, बस उतनी सी बात है। बाकी पुरुषार्थ बिना का कोई जीव है ही नहीं। और कर्तृत्व भाव से मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इसका नाम कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, इसका नाम कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ है वो प्रयोजनभूत ज्ञान के पीछे सहज चलने वाला एक ज्ञान बल है, उसको पुरुषार्थ कहने में आता है। पुरुषार्थ क्या चीज है, ज्ञान बल को पुरुषार्थ कहते हैं। उल्टा है, उल्टा ज्ञान है तो उल्टा ज्ञान बल है, सुल्टा ज्ञान है तो सुल्टा ज्ञान बल है, लेकिन चलता है समझ के अनुसार चलता है। जो कोई जीव जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है वो अपनी समझ के अनुसार करता है कि नहीं, देख लो अपने आप में। ये बात तो प्रैक्टिकल साइड की है कि अपने आप में देखो तो मालूम पड़ ही जाएगा कि सिद्धांत तो बराबर है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि अपनी अपनी समझ को ठीक करो, यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में समझो तो यथार्थ पुरुषार्थ होएगा। निश्चित काल, निश्चित काल हुआ, इस विषय पर तो गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पर बहुत प्रवचन किए। क्रमबद्ध पर्याय मैंने क्या, एक एक समय की पर्याय का क्रम सुनिश्चित है। एक भी पर्याय आगे पीछे होती नहीं, हो सकती भी नहीं और कोई कर सकते भी नहीं। क्यों? कि पदार्थ परिणमन करता है वो अपने गुण धर्म के विज्ञान अनुसार, तो उसमें कैसा दूसरा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। उसमें दूसरा कहां से हो सकता है? कि हो ही नहीं सकता। जब हर पर्याय क्रमबद्ध है तो एक भी पर्याय को आगे पीछे करने की दृष्टि है वो गलत है, असम्यक है। सुगानी जी ने लिया एक पत्र में, पर्याय को आगे पीछे करने की दृष्टि ही असम्यक है, सम्यक दृष्टि को ऐसा होता नहीं है। कृपालु देव का 408 नंबर का पत्र देख लीजिए, जो जो काल में जो जो उदय आते हैं वो सम्यक प्रकार से वेदन करना वो ज्ञानियों का सनातन धर्म है। तीनों काल के ज्ञानियों का धर्म मैंने सनातन धर्म है, उसमें आगे पीछे करना, हानि वृद्धि करना ऐसा ऐसी इच्छा ज्ञानी को होती नहीं है, कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी ज्ञाता बन गए, जो भी उदय आता है आने दो, सम्यक प्रकार से उसका ज्ञाता दृष्टा रहो और ज्ञाता दृष्टा रहो ऐसा पुरुषार्थ करो, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, आपको राग द्वेष में होगा नहीं और राग द्वेष का फल स्वरूप दुख भी होगा नहीं, बस आप दुखी नहीं होंगे, सुखी हो जाएंगे, बात समाप्त तो होती है मां। इसलिए कहते हैं कि काल लब्धि के बिना जीव ने करोड़ उपाय किए लेकिन सम्यक रूप परिणमन के योग्य नहीं था, इसलिए उसको सम्यक हुआ नहीं। लेकिन ये बात अवलंबन करने के लिए नहीं है, जानने के लिए है। इसलिए जानना चाहिए कि सम्यक वस्तु यत्न साध्य नहीं है, सहज रूप है। देखो क्या लिखा है, जो प्रकरण लिखेगा काल लब्धि का प्रकरण लिख रहे तो ऐसा ही लिखेंगे। नहीं किया, ज्ञानी के मार्ग में चलने का कोशिश नहीं किया, अपनी मनमानी किया है, ऐसा हुआ है। ज्ञानी के मार्ग पर चले और उसको सम्यक्त्व नहीं होवे, ऐसा तीन काल में बनने वाला नहीं है, तीन काल में तीन लोक में बनने वाला नहीं है, और इसकी काल लब्धि पक्की नहीं हो ऐसा भी बनने वाला नहीं है। ये बात है, इसलिए हमको तो ये बात जान करके साइड में रखने का है। हमको तो अभी चाहिए चाहिए और चाहिए, जरूरत लगी तो पुरुषार्थ सहज चले बिना रहेगा नहीं। अतः ऐसा जानना चाहिए कि सम्यक वस्तु यत्न साध्य नहीं, यत्न मैंने कर्तृत्व का कृत्रिम पुरुषार्थ के अधीन नहीं। वो बात है, सहज मैंने सहज पुरुषार्थ के अधीन है। ऐसा अंदर बात है। शब्द तो शब्द है, भाव कौन निकाले? शब्द तो ऐसा है कि उल्टा ही समझ में आ जाए, लेकिन उल्टी बात है, उल्टी बात है ही नहीं। इधर क्या कहते हैं कि ऐसा जानना चाहिए कि सम्यक तो वत्नु यत्न साध्य, मैंने कृत्रिम पुरुषार्थ के साध्य नहीं है। तो कृत्रिम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? कि कोई बैठ गया, मैं तो अपने कमरे में या जंगल में जाकर के ध्यान में बैठ जाऊंगा, सम्यक्त को लिए बिना उठूंगा ही नहीं। मैंने मेरे को खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, कुछ करना नहीं, हिलना ही नहीं है, बस मैं तो बैठ जाऊंगा ध्यान लगा के, सम्यक्त को लेके उठूंगा। हाँ, सीधा ही कोई ध्यान में बैठता है, सम्यक दर्शन हमको ध्यान में तो सम्यक दर्शन होता है, बिना ध्यान में तो होता नहीं, ध्यान लगा दें। ऐसा कृत्रिम पुरुषार्थ करके कोई बैठ जाता है और उसको सम्यक तो हो जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। इस प्रकार से कृत्रिम यत्न के साध्य नहीं है वो। इसके लिए तो जो ज्ञानी की योजना है उस क्रम में आना पड़ेगा और उस क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बिना होने वाला है ही नहीं, ऐसी बात है। इसलिए इस प्रकार का यत्न साध्य नहीं है। और सहज है मैंने कि पुरुषार्थ जिसका चलता है वो सहज ही चलता है, पुरुषार्थ का स्वरूप ही सहज है। कृत्रिम रूप से चलना ये पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं है, सहज चलना वो पुरुषार्थ का स्वरूप है। जो पुरुषार्थ का यथार्थ स्वरूप को समझता है वो ऐसा ही समझता है। और करू 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 ऐसे हो जाएगा, मैं करके रहूंगा ऐसे हो जाएगा, वो पुरुषार्थ का स्वरूप जो समझता है वो पुरुषार्थ के स्वरूप को समझा ही नहीं है, समझता ही नहीं है, ऐसी बात है। अब सम्यक पुरुषार्थ की का एक विचार करें कि पुरुषार्थ तो सबों को चलता है, इसकी दो ही दिशा है, एक बहिर्मुख और एक अंतर्मुख, तीसरी दिशा है नहीं। जब तक अंतर्मुख पुरुषार्थ नहीं चलता है तब तक जीव का बहिर्मुख पुरुषार्थ अवश्य अवश्य चलता ही है। बात समाप्त हो गई उस विषय में। अब अंतर्मुख पुरुषार्थ कहां से चालू होता है और क्यों होता है और वो क्यों सहजता धारण करता है? कि जब भावभाषण स्वरूप का होता है, अनुभवान से प्रत्यक्ष अंश से, वेदन के प्रत्यक्ष अंश से जब पूरा स्वभाव का भावभाषण होता है तब चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा उत्पन्न हो जाती है। चैतन्य वीर्य मैंने स्वभाव का वीर्य पुरुषार्थ। क्यों? कि अपने अपरिमित अद्भुत से अद्भुत सामर्थ्य धारण करने वाला अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप का प्रत्यक्ष अंश से एक झांकी हो गई और बल आ गया, अरे मैं ऐसा हूं, वो सह जाएगा। दरिद्री को अपनी संपत्ति देख करके बल लाना पड़ता है या आ जाता है? आपको बिजनेस करते हुए एक बड़ा मुनाफा हो गया, एक ही सौदे में करोड़ों अरबों आ गया, तो बल लाना पड़ता है इसके लिए। हाँ, क्या आ जाता है? आ ही जाता है। मेरे पास उतना है, बस जब स्वभाव का निश्चय होता है, पहचान होती है, भाव भाषण होता है, उसका अस्तित्व ग्रहण इसलिए बोला कि अपने अस्तित्व में, मौजूदगी में अनंत सुख भरा है, अनंत आनंद भरा है, अनंत शांति भरी है, अनंत ज्ञान भरा है, ये सब कुछ अंदर भरा है। कहाँ भरा है? अपने अस्तित्व में। ऐसे अस्तित्व को ग्रहण कर लिया अनुभव अंश से, अनुभव मैंने प्रत्यक्ष अंश से, और वो भी चीज प्रत्यक्ष है, इसका विषय भी प्रत्यक्ष और विषयी भी प्रत्यक्ष। बल लाने की जरूरत पड़ती है क्या? पुरुषार्थ तो वीर्य गुण तो परिणमन कर ही रहा है, वो इधर लग जाता है, जो उधर लगा था वो उधर लग जाता है, इधर लग जाता है, बस बात खत्म। और शहद लगता है, उसको चैतन्य वीर्य की स्फुरणा कहने में आती है। उसके पहले कभी दिशा बदलती नहीं, वही एक यथार्थ कारण है जिसको बीज ज्ञान कहते हैं। वो बीज ज्ञान कि जो लिंक है वो योजना अनुसार पूरी लिंक है। तो उस प्रकार से अनंत जन्म मरण करी चुकेला एवा आ आत्मानी करुणा जेने आवे छे, एनो पुरुषार्थ यथार्थ प्रकारे योजाय छे, यथार्थ पदार्थमां यथार्थ प्रकारे योजाय छे, अने तेज आत्मा मुक्त थवानो अभिलाषी छे, अने तेज आत्मा मुक्त थाय छे, बीजो मुक्त थतो नथी। तो बात तो एकदम साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, कृत्रिमता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। कृपालु देव ने तो पुरुषार्थ के विषय में सम्यक दर्शन को वाचा दिया है। ऐसे तो सम्यक दर्शन अरूपी पदार्थ है, और वाचा तो रूपी होती है, वाणी तो पुद्गल है, और सम्यक दर्शन तो चैतन्य का शुद्ध परिणमन है, वो पुद्गल नहीं है, फिर भी उसको वाणी दिया, वो बोलने लगा, सम्यक दर्शन बोलने लगा कि हे जीव, अगर तुम मुझे ग्रहण करेगा, एक दफे भी ग्रहण कर लिया, तेरा उल्टा पुरुषार्थ में चलने नहीं दूंगा, तुम उल्टा जाने का प्रयास करेगा तो मैं तुमको नहीं चलने दूंगा, और मैं तुमको घसीट करके मोक्ष में ले जाऊंगा, तुमको तुम्हारी संसार की रुचि को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तोड़ दूंगा, और तुमको मैं खींच करके मोक्ष में ले जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि पुरुषार्थ मोक्ष में जाने का सहज होता है, सम्यक्तव का पुरुषार्थ भी सहज और मोक्ष का पुरुषार्थ भी सहज, सहज ही होता है। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ तो सहज रूप है, पुरुषार्थ का रूप ही सहज है, कृत्रिमता वो पुरुषार्थ का रूप होता ही नहीं है। बस जो जैसी बात है वैसी समझ लो, बात खत्म होगी। तो इस तरह से यहां आसन्न भव्य जीव को ये बात कही, किसको कही? आसन्न भव्य जीव को आचार्य महाराज ने ये बात कही। देखो तुम्हारी सम्यक्त्व की, काललब्धि की, पुरुषार्थ की, कोऑर्डिनेशन की, ये सब बात ऐसी है। अब देखो अगर तुम्हारी भव्यता नजदीक है, समीप है, तो तुम ज्ञानी के मार्ग में, योजना में चले जाओ और अपना काम कर लो, बात होगी पूरी। यहाँ तक रखें, आगे का विषय कर लेंगे।
सकल नी सकल